ओम शांति। आज हम आदि रतन मिठू दादी का अनुभव सुनेंगे, उसकी विशेषताएं सुनेंगे, उसकी जन्म कहानी सुनेंगे। ऐसे मिठू दादी को किसी ने देखा है, उसके बारे में सुना है? मिठू दादी का जन्म की कहानी कहीं ऐसी है कि भक्ति मार्ग में कई बार बहुत इंतजार करते हैं बच्चे का जन्म की, तो मिठू दादी जी के माता पिता ने बहुत इंतजार किया था बच्चे के जन्म की, लेकिन 14 साल इंतजार के बाद उसको बच्ची का जन्म हुआ और ये बच्ची थी मिठू दादी। तो छोटेपन में ही वो गुरुद्वार में जाती थी और छोटी उम्र में ही वो, उसका गाला बहुत सुंदर था, गीत गाना बहुत अच्छा जानती थी, हारमोनियम पर गीत बजाती थी, जब गुरुद्वार में जाती थी गीत बजाती थी तो इतना अच्छा गीत उसका भजन होता था कि सुनने वालों की आंखों में पानी आ जाता था, भावी भोर हो जाते थे। तो वही विशेषताएं लेकर के 14 साल की उम्र में माता पिता के साथ समर्पित हो गई यज्ञ में, और यज्ञ में जब समर्पित हो गई तो जैसे आप सभी ने 5 चिड़ियों का नाम सुना होगा, उसमें से वो मिठू दादी एक थी। उसमें एक कला थी, संगीत की कला थी, और भी 14 साल जब भट्टी चली उसमें उसकी 3 कलाएं थी। सबसे पहले थी संगीत की, हारमोनियम पर गीत बजाना, मम्मा बाबा के साथ साथ कुछ गीत बजाना और मम्मा दादी के साथ गीत गाना। और दूसरी विशेषता उसकी थी कि वो एक नर्स जैसा काम करती थी, स्टाफ नर्स। भट्टी जब चली थी वहां 14 साल की तपस्या के दौरान, स्टाफ नर्स थी, तो सिर्फ शरीर की नहीं, शरीर और तन और मन, जो भी व्यसन उसके पास आता था उसके तन और मन की जो भी व्याधि थी वो जान जाती थी और फिर उसको संतुष्ट कर देती थी उसके दवाइयां दे करके। और तीसरा उसकी एक विशेषता थी सिलाई। यज्ञ में जो भी पहने थी उनके हर प्रकार के जो कपड़े सिलाई करती थी। तो 3 विशेषताएं उसकी थी। बाबा ने उसका नाम रखा था, अव्यक्त नाम दिया था, गुलजार मोहिनी उनका अव्यक्त नाम था। उसकी उसके साथ जो भी बहनें रहती थी, भाई रहते थे, तो उन भाई बहनों की पालना उसी रीति से करती थी जैसे 14 साल बाबा ने जैसे उनकी पालना की थी, वैसे बहुत प्यार से, बहुत डिसिप्लिन सिखाती थी, बहुत प्यार से पालना करती थी। लेकिन जब मधुवन में उनको लाना होता था तो पंडा बनकर के आती थी, तो उसी समय तो बहुत ही कम लोग थे, मम्मा बाबा को मिलना बहुत मुश्किल नहीं होता था, तो सीधा उसके कमरे में ले जाते थे। तो एक परिवार था, एक भाई और एक बहन, पहली बार 6 मास के अंदर ही उसको मधुवन में लेके आए थे, तो सीधा मम्मा बाबा के कमरे में ले गए और मम्मा बाबा ने उसको भोजन करते थे तो गिट्टी भी खिलाई और उसने भी बाबा को गिट्टी खिलाई, तो उसको अंदर से बहुत खुशी हो गई। तो दादी प्यार से पालना भी दिलाती थी और उस इतना दिलवाड़ा जो भी मधुवन में देखने लायक था माउंट आबू में, वो साथ साथ उनके साथ साथ गई, जबकि वो स्टूडेंट 6 मास का ही था। तो उसी रीति से उसकी बहुत प्यार से पालना करती थी, लेकिन वो जहां भी उनका सेंटर्स था वहां पटियाला में वो थी, और भी बहुत सारे सेंटर्स में वो थे, लेकिन उसका एक बहुत शौक था कि मनोरंजन, भाई बहनों का मनोरंजन करने के लिए स्नेह मिलन करती थी, फिर पिकनिक प्रोग्राम, पट्टी का प्रोग्राम और खुली जगह पे ले जाते थे मनोरंजन के प्रोग्राम के लिए, और बहुत ही लोगों को उमंग से भर देती थी। फिर इसके साथ साथ भट्टी का जब प्रोग्राम बन रहा था तो कैसे आत्मिक स्थिति से रहना है, कैसे मतलब कि भाई बहनों को आत्मिक दृष्टि से देखना है, और जब भट्टी कराती थी तो इतनी डीप साइलेंस में ले जाती थी और आत्मिक पाठ का ऐसा पक्का कराती थी कि बहुत ही उसकी बहुत ही अभ्यास था। फिर ऐसा था कि जहां जहां उसी समय ऐसा था, बहुत समय ऐसा ही चला था कि कहां भी जरूरत पड़ती है तो एक जैसे कहीं भी मेला होता है, कोई भी प्रोग्राम, छोटा छोटा प्रोग्राम होता है तो सारे मिलकर के करते हैं। आज तो ऐसे अलग अलग हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो जहां भी जरूरत पड़ती थी दादी अपने सेवा केंद्र से भाई बहनों को लेकर के वहां पहुंच जाती थी और चढ़ बढ़ करके बहुत ही अच्छी रीति से उनको सहयोग देती थी और भाई बहनों को उमंग उत्साह भी दिलवाती थी, ले जाती थी। उसको खाली बैठना पसंद ही नहीं था, तो क्या करती थी, जब भी सेवा नहीं होती थी तो जो अपने स्टूडेंट है उसके घर में जाती थी, उसके घर में जाकर के उनके घर में जाकर के खाना बना करके भोग लगा करके सबको खिलाती थी। उसकी विशेषता थी ये। और वो जो है ना, माता पिता की एक एकलौती बेटी थी, मतलब कि उसके भाई बहन नहीं था, तो सभी स्टूडेंट जो भी आते थे उसको ऐसा प्यार देती थी जैसे बहनों, अब खुद जैसे लौकिक भाई बहन कैसे होते हैं वैसा प्यार देती थी। लेकिन उसका जो व्यक्तित्व कैसा था, बहुत पुरुष जैसा था, निडर थी, बहादुर थी, जरा भी किसी से डरती नहीं थी, ज्ञान सुनाने में कोई भी प्रकार का सामना करने में डरती नहीं थी। फिर स्टूडेंटों के साथ तो बहुत ही अच्छी, और इतना स्नेह भरा उसका व्यवहार होता था, मधुरता का, तो आगे पीछे बहुत लोग रहते थे उसका, लेकिन वो किसी से प्रभावित नहीं होती थी, किसी से सेवा नहीं लेती थी, क्योंकि वो समझती थी कि बाबा ने भी सेवा अपने हाथ से ही, अपना कार्य अपने हाथ से किया तो मैं क्यों लूं, तो सेवा नहीं लेती थी। भाई बहन उसको पूछते रहते थे, लेकिन वो कभी किसी की सेवा नहीं ली उसने। फिर उनके साथ जो टीचर्स रहती थी, उस टीचरों के साथ वो किस प्रकार से रहती थी, टीचरों के साथ भी बहुत अच्छी रीति से रहती थी, लेकिन डिसिप्लिन बहुत सिखाती थी, छोटी छोटी बातें ऐसी होती थी जिसमें वो सिखाती थी। और उसी समय यज्ञ की शुरुआत में तो गैस चूल्हा ये सब नहीं होता था, चूल्हा होता था, गैस नहीं होता था, तो जब भोजन पूरा हो जाता था तो मिट्टी लगानी पड़ती थी चूल्हे को। तो उनके पास जब नई बहन आई थी तो वो बहुत छोटी थी और उसको माता पिता जैसी ही पालना दादी ने दी थी, तो उसके पास जब रही वो तो उसको माँ बाप की याद भी नहीं आती थी। लेकिन एक बार दादी ने उसको बताया कि देखो तुम्हें ना आज चूल्हे को मिट्टी लगाना, तो उन्हें बोला कि मुझे चूल्हे को मिट्टी लगाना तो नहीं आता है। तो उसको फिर दादी ने बताया कि तुम झाड़ समझाती हो ना, तो कि हाँ, फिर तुम त्रिलोक समझाती हो ना, तो कि हाँ, तो तुम चित्र पहले तो नहीं समझाती थी, अभी समझाती है ना, तो सीख गई ना, वैसे चूल्हे की मिट्टी भी सीख जाएगी। कभी भी कोई भी सेवा में मना नहीं करना, अगर नहीं आता है तो बोलने का कि मुझे नहीं आता है, मुझे सिखाओ, तो ऐसे कभी मना नहीं करना सेवाओं में, ऐसे उनको छोटी छोटी बातें में शिक्षा दे देती थी। फिर मंथन करना कैसे सिखाती थी, तो मंथन करना उसका एक टॉपिक रहता था। वो कहती थी कि देखो स्टूडेंट और टीचर्स, क्योंकि उनके साथ जो बहनें रहती थी और स्टूडेंट भी होते थे, तो वो दो पार्ट करती थी कि जैसे यहां भी हम कई बार ऐसे डिबेट की थी ना, परमात्मा सर्वव्यापी है, एक ग्रुप ऐसा था, एक ग्रुप ऐसा था, नहीं है, तो ऐसे डिस्कशन कराती थी। फिर गीता का भगवान कौन है, ऐसे मुरली में जो भी टॉपिक आता था तो 15 दिन में, 1 मास में ऐसे मतलब कि सबका मिलन कर, मतलब संगठन होता था, उसमें ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन होता था, तो मंथन करना भी वो सिखाती थी। स्टूडेंट जो आते थे तो कभी कभी क्या होता था कि अभी तो सेंटर पर बहुत थोड़ा क्लोज हो गया है, बाहर के लोग इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं, लेकिन उसी समय तो 1-2 ही कमरा होता था तो सीधा स्टूडेंट सीधा ही आ जाते थे। तो जब भोजन करते थे तो कोई भी स्टूडेंट आ गया तो क्या करेंगे, तो उसको गिट्टी खिला देते थे, जैसे बाबा भी जो भी आते थे ना उसको गिट्टी खिलाते थे, गिट्टी माना एक, तो दादी भी जो भी आते थे उसको प्यार से गिट्टी खिला के बिठा देती थी। तो वो उसकी विशेषता थी कि कोई भी स्टूडेंट आवे, कोई भी बहन आवे, कोई भी टीचर आवे तो ऐसे खाली सिर्फ हलो करके नहीं जाए, गिट्टी खिलाती थी। दूसरा उसमें ऐसा था कि जब भी वो मधुबन में किसी को लेके आती थी तो वो भी शौकीन बहुत थी, तो क्या करती थी कि उनको पहले सिखाती थी, समझाती थी, देखो बाबा है ना उनके पास ऐसे नहीं जाना है, वो स्वच्छ शुद्ध होकर के जाना है। तो स्नान, वो जब आते थे तो स्नान आदि करा करके बोलती थी पाउडर वाउडर लगा करके जाने का, सेंट लगा के जाने का, क्योंकि बाबा ने जब भी वहां भी सेंट लगाते थे इसलिए आपको भी ऐसे सुगंध होती है तो बहुत अच्छा होता है। बाबा ने मतलब कि जो गुरु लोग आते थे ना तो उनके लेट्रिन में इत्र लगाते थे, तो ऐसे आपको भी बहुत शुद्ध होके जाना है। अगर किसी के पास नहीं है, वो दादी कोई कोई कहते हमारे पास नहीं, तो दादी अपना पाउडर देती थी, सेंट देती थी, नहीं ऐसे नहीं जाना है, बाबा के पास जाना है, कोई कॉमन व्यक्ति के पास नहीं जाना है। तो मतलब कि इस प्रकार से मतलब बहुत शौकीन तो थी, लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे वैसे वो जाने दे, टिप टॉप होकर के जाना है, बाबा के पास जाना है, क्योंकि आपको पता है शुरुआत में तो ब्रह्मा बाबा को भगवान ही समझते थे ना, तो मतलब बहुत ही बहुत ऊंचा रिगार्ड था। और उसकी ऐसी स्नेह की रूहानी स्नेह उसमें बहुत था, इतना रूहानी स्नेह था, तो कोई भी स्टूडेंट आता था जल्दी से कोई भी बात स्वीकार कर लेता था। फिर उसमें एक विशेषता ऐसी थी कि वो निरहंकारी बहुत थी, और तो क्या था कि उसी समय तो इतना ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं होती थी तो पैदल ही जाना पड़ता था, तो बहुत सारी सेवाएं पैदल, कोई एक एक छोटा सा गांव होता है नजदीक होता है तो कुछ नहीं होता था तो ऐसे ही चले जाते थे, कभी बैलगाड़ी में जाते थे, और समय पर पहुंचना वो उनकी एक विशेषता थी, समय पर पहुंच जाते थे। और छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, बहुत ही छोटा प्रोग्राम था, छोटा कार्यक्रम होता तो भी वो कभी भी मिस नहीं करती थी, तुरंत पहुंच जाती थी। फिर स्टूडेंटों की तो और सभी की, हमारी सभी की कमजोरियां तो होती है, एक दो को मालूम होता है, तो दादी को मालूम पड़ता था कि इस व्यक्ति की बहुत ही कमजोरी है, तो किसी भी स्टूडेंट के सामने वर्णन नहीं करती, किसी भी भाई या बहन के सामने वर्णन नहीं करती थी, और लेकिन बताना भी है इसलिए, और उसको महसूस भी मतलब कराना है, लेकिन उसको उदास भी ना हो जाए, मायूस भी ना हो जाए, तो उसके ढंग से वो पास में बुलाती थी, टोली खिलाती थी, उसके बाद उसको कमजोरी की बातें इतना प्यार से बताती थी तो व्यक्ति मायूस भी नहीं हो जाता था, उदास भी नहीं हो जाता था, और उसमें उमंग वो सब भर देती थी। और 14 साल की जो तपस्या का बाबा के पास का अनुभव था, वो चाहती थी कि मेरा कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो जाए, हर एग्जाम में पास हो जाए, इसलिए निश्चय बुद्धि हो जाए, विजयी बन जाए, इसलिए बाबा मम्मा की इतनी गहरी गहरी बातें जो अनुभव में आती थी वो सारी बताते थे। फिर उसके जीवन में विघ्न भी आया था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि विघ्न नहीं आया, विघ्न भी आया था, और विघ्न ऐसा था कि क्योंकि उसी समय तो मकान नहीं मिलता था, तो मकान जब लेते थे तो वो सब थोड़ा एंटी भी होते हैं ना, तो जल्दी जल्दी मकान खाली करवा देते हैं, तो मकान मालिक के साथ भी थोड़ा ऊपर नीचे बोलना हो जाता था। फिर जिज्ञासु सब एक जैसे नहीं होते हैं, है ना, तो जिज्ञासु भी कभी रूठते थे कभी टूटते थे, फिर उसको मनाना पड़ता था। फिर उसी समय तो मतलब कि धन का भी अभाव था, तो कैसे मतलब कि इकोनॉमी किसे चलना है, धन का अभाव के कारण छोट कैसे सेंटर चलाना है, तो धन का अभाव होता था, गरीबी होती थी उस समय, इतना पैसा जल्दी से कोई देता नहीं था तो, और शारीरिक बीमारी आती थी, डॉक्टर दूर दूर होते थे, जाना मुश्किल होता था, ये सब कुछ बहुत कुछ विघ्न भी आता था, लेकिन इतनी निडर थी कि वो जो भी बातें उसके सामने आई वो बहुत निडरता से और बहुत सामना किया उसने। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात उसके अंदर थी, बाबा के साथ का उसका अनुभव बहुत अच्छा था, तो बाबा को उसने एक बार ऐसा कहा कि बाबा मैं तो एकलौती बेटी हूं ना, तो मेरे को तो भाई नहीं है, तो बाबा ने उसको है ना तो कृष्ण का साक्षात्कार कराया और बोला तुम्हारा ही भाई है, कृष्ण तुम्हारा भाई है, ऐसा साक्षात्कार करा के बोला। और उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने उसका भाई का संबंध निभाया, मिठू दादी को कभी भी बाबा ने बच्ची नहीं कहा, मिठू बहनी कहता था, अंत तक मिठू बहनी कहा, तो ब्रह्मा बाबा ने उसके साथ साथ निभाया। और बाबा कभी कभी उसकी बाबा का नेचर भी जॉली था, उसका भी था, तो बाबा कभी कभी वो जब भी ऐसे पटियाला में रहते थे, वहां से उनको फिर लुधियाना जाना पड़ा था, तो लुधियाना जब जाती थी तो लुधियाना में गर्म कपड़े मिलते थे, तो यहाँ बहुत ठंड होती थी, तो बाबा उससे गर्म कपड़े मंगवाते थे, गर्म कपड़े में मंकी टोपी ये सब मतलब उसको कहते थे सब भेजना यहाँ। तो एक बार है ना उसने बहुत सारा सामान भेज दिया और बाबा को कहा कि बाबा मैंने ये सैंपल भेजा है, लेकिन मैं फैक्ट्री में नहीं जा सकी थी, तो बाबा ने उसको जवाब दिया कि तू बुरखा पहन के बैठी थी जो नहीं जा सकी, तो बाबा बुरखा कि क्यों नहीं देखा मतलब ऐसे, तो मतलब कि बाबा का उसके साथ रमणीकता का मतलब कि बाबा तो रमणीकता से बात भी कर लेते थे, तो ऐसी बात भी करती थी, और वो भी है ना बहुत रमणीक थी। एक बार क्या हुआ कि पटियाला में मम्मा बाबा आए, 7 दिन रहे थे, मैं रहे, तो फिर जब बाबा मम्मा बाबा आया तो मम्मा को वहां छोड़ा और बाबा जा रहा था, तो मिठू दादी ने क्या किया उसका हाथ पकड़ लिया बाबा का, और हाथ पकड़ लिया जाने नहीं देता था, तो दादी ने हाथ छोड़ दिया ना, तो दादी को अंदर से क्योंकि दादी तो गीत बना ही देती थी, तो दादी ने गीत बनाया गीत गाया बाबा के सामने, इसका शब्द में बोलती हूँ, निर्बल मोहे जान के हाथ लियो छोड़ाए, जब जाओगे दिल से तब मानूंगी, तो ही बाबा ने कहा ऐसा ऐसा गीत गाया उसने कि अगर दिल से तुम जाएगा तभी मैं मानूंगी, ऐसे हाथ छुड़ा करके जाओ। तो फिर बाबा ने उसको समझाया मैं 1 सप्ताह के बाद फिर से आऊंगा तो मम्मा को लेके जाऊंगा, क्योंकि हाथ तो छुड़ा दिया, हाथ तो छुड़ा सकते हैं लेकिन दिल में जो बैठा है वो दिल से छुड़ा दो कैसे हो सकता है, ऐसा कि मैं तो निर्बल हूं क्योंकि आप तो बलवान हो, है ना, हाथ छुड़ाना तो मुश्किल नहीं है लेकिन दिल से छुड़ाना मुश्किल है ना, ऐसा तो तो बाबा ने उसको समझाया कि मिठू बहन ऐसा है कि मम्मा यहां है ना, 7 दिन के बाद में लेने आऊंगा, चिंता नहीं करना, ऐसा। तो 7 दिन के दौरान बाबा ने एक टेलीग्राम भेजा और मम्मा को टेलीग्राम दे करके संदेश दे करके बुलवा लिया फिर बाबा ने क्या तो फिर मिठू दादी ने क्या किया, एक रिकॉर्ड बनाया, गीत बनाया और रिकॉर्ड भेजा, क्या भेजा, प्रभु तुम बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चल दिए बड़े चोर निकले, मैंने समझा बड़े दाता हो, दिन दुखियों के भाग्य विधाता हो, ऐसा गीत रिकॉर्ड करके भेज दिया। फिर फिर दादी की मतलब की सेवा करते करते वीकन भी आया, भाई बहनों को भी मतलब की बहुत अच्छी दीदी से मतलब की साथ में रहे, और वहां उस समय की जो बहनें थी वो भी मतलब की ऐसा समझते थे लोग कि अगर मिठू दादी के साथ रह गए ना तो दुनिया के कोई भी जगह पे रह सकते हैं। उसकी प्रसिद्धि थी ऐसी कि अगर मिठू दादी के साथ कोई भी सेंटर पर बहन रुक गई ना, टिक गई ना, तो दुनिया के कोई भी सेंटर पे वो रह सकती है। फिर बीमारी आई उनकी, तो बीमारी में तो बहुत बीमार रहते थे वो, तो फिर बाबा ने उसको बुलवा लिया, तो 3 मास मधुबन में रखा था। तो 3 मास मधुबन में रखा तो बाबा रोज रोज तो उसके पास नहीं जाते थे, लेकिन 1 वीक में एक बार जाते थे, और उसी समय दीदी थी तो दीदी तो हमेशा उनके पास जाती थी, दीदी और दादी हालचाल पूछने जाते थे। और बाबा था वो, उसको प्यार तो था, सभी बच्चों से प्यार तो होता है, तो अनार की टोली, उसमें अनार बहुत महंगा आता था, अनार की टोली उसको रोज ही भेजते थे। और उनके साथ उनको संभालने के लिए जो बहन आई थी उसका नाम कृष्णा बहन था, वो संदेशी थी, तो वो साथ में मतलब कि 3 मास रहे। उसके बाद 7 दिन पहले मतलब कि फिर उसको बाबा ने कहा कि अभी उसको भेज दिया पटियाला में, तो पटियाला ले गए, तो पटियाला ले गए तो शरीर छोड़ने के 7 दिन पहले वो कृष्णा बहन थी ना, वो संदेशी थी, तो वो मतलब कि हमेशा संदेश लाती थी। तो शरीर छोड़ने के 2 घंटे के पहले मतलब कि उसने मतलब बहुत बीमार हो गई, तो उसने मैसेज भेजा मधुबन में कि क्या करूं। तो बड़ी दीदी ने कहा कि तुम तो संदेशी हो ना, तो बाबा से पूछ के आओ कि क्या करना है। तो जब वो वतन में गई तो वतन में उसने एक पर्दा देखा, उसमें लिखा था ड्रामा, तो ड्रामा लिखा था, तो उसने समझा कि अभी इसको डॉक्टर ने बोला था कि इसको चंडीगढ़ ले जाओ, यहाँ अभी पटियाला में वो बहुत सीरियस नहीं रह सकेगी, चंडीगढ़ बड़ा हॉस्पिटल है। तो उस तो बड़ी दीदी को पूछा, तो बड़ी दीदी ने कहा कि आप मतलब बाबा को पूछो। तो बाबा जब वतन में गए तो उसने एक पर्दा देखा, उसमें ड्रामा लिखा था, इसका मतलब कि उसको चंडीगढ़ नहीं ले जाना है। और 2 घंटे के बाद उसने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद जब ही वो 7 दिन पहले उसको अंदर से ऐसा था कि मैं दादी को और दीदी को पत्र लिखूं, लिखना था, लेकिन उसका हाथ नहीं चलता था, बोल नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी बहुत इच्छा थी, लेकिन उसका शरीर छूट गया। फिर संदेशी जो थी वो वतन में गई, वतन में गई तो उसने दादी को पूछा कि आपकी आप कुछ मतलब कि आपकी कोई इच्छा थी ना, तो उसने बोला कि डायरी पेन लाओ। तो फिर वो संदेशी बैठी थी, उसको उन लोगों ने डायरी पेन दिया, तो डायरी पेन में उसने क्या लिखा कि दादी और दीदी को ऐसा लिखा कि मैंने है ना मेरी सारी जिम्मेवारियां पूरी कर दी, अभी आप जानो बाबा जानो। मतलब कि ऐसे ऐसा लिखना था। तो फिर संदेश ये संदेश लेके आई। उसके बाद क्या हुआ कि जब ही फिर यहाँ 12 दिन के बाद 13वां दिन में भोग लगाते हैं, तो जब ही उनका भोग लगाया तो सारे पंजाब के जो भी उन्होंने सेंटर खोले थे वो सारे भाई बहन आ गए, और भाई बहनों की इच्छा थी कि मिठू दादी यहाँ मतलब यहाँ आए। तो संदेशी को मतलब कि ऐसे में तभी चंद्रमणि दादी, अचल बहन, सभी बहने मतलब कि वो आए वहां, सारा जितने भी ब्रह्मावत्स थे, जितने भी सेंटर्स के, वो सारे इकट्ठे हुए थे वहां पटियाला में। और पटियाला में भोग लगाया तो सभी की अंदर से डिमांड थी कि मिठू दादी आए तो अच्छा है। तो फिर जब ही संदेशी वतन में गए तो मिठू दादी उनके तन में आई, तो तन में आई तो चंद्रमणि दादी, उसका हाव भाव चेंज हो गया, वो संदेशी को तो नहीं पता था लेकिन उसको बाद में बताया, लेकिन उसका हाव भाव चेंज हो गया जैसे मिठू दादी का था वैसे। तो चंद्रमणि दादी को समझ में आ गया कि मिठू नीचे आ गई है, तो उसने बोला कि अरे तुम वतन में अकेली चली गई, हमको भी तो ले चलना था ना। तो मिठू दादी ने क्या बोला, आप जैसे शेर है ना उसकी तो यहाँ जरूरत है, वहां नहीं। उसके बाद मतलब कि जब ही सभी ने उसने उसी समय जब उसका शरीर छूटा था तो एक संदेश और भी लाई थी वो। उसने बोला था कि शोभा सबकी शोभा यात्रा पैदल ले जाओ सारे मतलब जहां सेंटर के आसपास तो सारे पटियाला में कुछ कुछ एरिया में उसकी सबकी शोभा यात्रा निकाली थी। तो बहुत सेवा हो गई थी। और 13वां दिन में जब ये चंद्रमणि दादी सब इकट्ठे हुए तो ऐसे बातचीत हुई। तो उसी रीति से दादी ने 8 मार्च 1983 में अपना पार्थिव देह छोड़ दिया। ओम शांति।